नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ TCA शरद राघवन की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कि बजट गोपनीयता को ख़त्म करने का समय आ गया है। संसद में पेश करने से पहले इसके लिए लोगों की राय लेने की ज़रूरत है। बजट का क्वारंटाइन या क्वाइट पीरियड शुरू होने में महज एक सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अभी भी पर्याप्त समय है कि वो बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी उपनिवेशकालीन आखिरी परंपरा को भी तोड़ दे और ये बजट प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीयता को भी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से बजट सुधारों की दिशा में पहले ही उठाए जा चुके कदमों की अगली कड़ी होगी। क्वारंटाइन पीरियड दिसंबर में शुरू होता है और 1 फरवरी को बजट पेश होने तक जारी रहता है। इस दौरान पत्रकारों, नीति सलाहकारों, समूहों और उद्योग निकायों को वित्त मंत्रालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। आम बजट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारी एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उनमें से कई तो क्वारंटाइन की पूरी अवधि मंत्रालय में ही गुजारते हैं और बजट पेश होने तक घर नहीं जाते। 2021 में डिजिटल ओनली बजट की शुरुआत का नतीजा ये हुआ कि ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें इस तरह लॉकडाउन में रहना पड़ता था, उनकी क्वारंटाइन अवधि काफ़ी हद तक घट गई है। हालांकि बजट को लेकर गोपनीयता बरते जाने को अभी भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बजट गोपनीयता एक ऐसी परंपरा है जिसे आज़ादी के बाद से भारतीय नीति निर्माता काफ़ी महत्व देते रहे हैं। कॉलोनियल एरा के दौरान तो गोपनीयता महत्वपूर्ण होना समझ में आता है, क्योंकि भारत में पेश करने के बाद बजट को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता था। इसने ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों को प्रस्तावित टैक्स बदलावों को लेकर अंदरूनी सूत्रों के जरिए शेयर बाजार में मुनाफा कमाने का मौका दिया। इसलिए ये बेहद आवश्यक हो गया था कि बजट सामग्री को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले केवल कुछ ही खास लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। ये व्यवस्था स्वतंत्र भारत में भी जारी रही, लेकिन अब कई वजहों से इस तरह की गोपनीयता की ज़रूरत नहीं रह गई है और इसे ख़त्म किए जाने से वास्तव में नीति निर्माताओं को ही लाभ होगा। मुख्य कारणों में से एक ये भी वजह है कि केंद्रीय बजट को प्राइमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर एक खास दर्जा हासिल रहा है। जुलाई 2017 में माल एवं सेवा कर यानी GST व्यवस्था लागू होने से पहले केंद्रीय बजट में कराधान प्रस्तावों के संदर्भ में एक लंबा चौड़ा सेक्शन भी हुआ करता था। इसमें न केवल प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव शामिल थे, बल्कि तमाम अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव भी शामिल थे। GST लागू किए जाने के साथ न केवल इन अप्रत्यक्ष करों में से अधिकांश को नए कर के दायरे में लाया गया, बल्कि GST दरें तय करने का निर्णय भी बजट से बाहर कर दिया गया और इसका फैसला करने के लिए GST काउंसिल बनाई गई। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अधिकांश अप्रत्यक्ष करों की दरों को तय करने का काम आम बजट या असल में केंद्र सरकार के हाथों में नहीं रहा है। इसने बजट के सेक्शन बी को काफ़ी छोटा कर दिया है और गोपनीयता बनाए रखने के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को काफ़ी कमज़ोर भी किया है। प्रत्यक्ष कर अभी भी बजट के दायरे में आते हैं और संभवतः कैपिटल गेन टैक्स के अपवाद के साथ वास्तव में किसी भी तरीके से शेयर बाजार पर असर नहीं डालते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि बजट में घोषित प्रस्तावों पर अमल अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। यह बजट संबंधित सुधारों में से एक की वजह से ही संभव हुआ है, जो मोदी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। 2017 से बजट को फरवरी माह की आखिरी तारीख को पेश करने की पुरानी व्यवस्था के बजाय 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है। इसका मतलब है व्यक्तियों और कंपनियों के पास पूरे 2 महीने फरवरी और मार्च का समय होता है, जब वो बजट में प्रस्तावित घोषणाओं के लागू होने से पहले उन्हें अच्छी तरह जान समझ सकते हैं। ऐसे में 1 फरवरी से पहले घोषणाओं को गुप्त रखने का वास्तव में कोई फायदा नहीं है। संयोग से 2017 में ही पहली बार रेल का बजट भी आम बजट में विलय कर दिया गया, जिससे उसे अलग रखने की एक और उपनिवेशकालीन परंपरा खत्म हो गई। इससे पहले 1999 में पहली बार बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे किया गया। दरअसल शाम 5 बजे बजट पेश करने की प्रथा ब्रिटेन के साथ समय के अंतर के मद्देनज़र लागू की गई थी। बजट का पार्ट ए नीतिगत घोषणाओं, बजटीय आवंटन और नई योजनाओं से संबंधित होता है। ये बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन सरकार इस पर एक अलग ही तरह से काम करती है। सबसे पहले तो सरकार 1 फरवरी को नीतियाँ घोषित करती है, फिर पोस्ट बजट प्रतिक्रियाओं या आलोचनाओं पर गौर करती है और उसके अनुरूप इसमें अपेक्षित बदलाव करती है। सरकार के लिए भी बेहतर तो यही होगा कि वो अपनी प्रस्तावित योजनाओं और नीतिगत प्रस्तावों को पहले से दिसंबर के शुरुआत में ही सार्वजनिक कर दे। इस पर लोगों से प्रतिक्रियाएं देने के लिए कहा जा सकता है। ज़रूरी विचार विमर्श शुरू करवाया जा सकता है और फिर इसके बाद 1 फरवरी को अंततः इसने बजट घोषणाओं का हिस्सा बनाया जा सकता है। बजट गोपनीयता खत्म करने के अलावा केंद्र सरकार महामारी से निपटने के दौरान हासिल अनुभवों से भी सीख ले सकती है और बजट को साल में केवल एक बार पेश करने के बजाय छमाही पेश करने की परंपरा भी शुरू कर सकती है। 2020 में फरवरी में पेश बजट लगभग तुरंत ही कोविड-19 महामारी के कारण अप्रासंगिक हो गया था। ऐसे में सरकार को विभिन्न आत्मनिर्भर भारत मिनी बजट के रूप में अपनी नीतियों को नियमित तौर पर संशोधित करने को बाध्य होना पड़ा था। इस साल भी फरवरी अंत में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद उच्च मुद्रास्फीति और कम मांग के मद्देनज़र बजट 2022 को मध्य वर्ष में नीतियों में किए गए संशोधन से फ़ायदा हो सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो अनुदान के लिए पूरक मांगें केवल लेखा संबंधी अभ्यास बनी हुई हैं, क्योंकि जहां भी ज़रूरत पड़ती है अधिक धन दिया जाता है। हालांकि नीतिगत स्थिरता ज़रूरी है, लेकिन आम बजट में पूरे साल भर को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने के बजाय तमाम अन्य प्रभावित करने वाले फैक्टरों के आधार पर मध्यावधि पुनर्विचार की औपचारिक प्रणाली लागू करना उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा करना कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गोपनीयता की परिपाटी धीरे धीरे खत्म की जा सकती है। पार्टी के साथ शुरू करें, जिसे जल्द सार्वजनिक करने से सबसे ज़्यादा फायदे होंगे। यह नीतिगत बदलाव बजट बनाने की प्रक्रिया में औपनिवेशिक हैंगओवर से बाहर आने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम साबित होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे प्रिंट पार्ट के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।